आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए पैसों की चिंता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ऊंचे ब्याज दर, बढ़ता किराया, कॉस्ट ऑफ लिविंग और लगातार बढ़ते बिल, हर परिवार किसी न किसी तरह का दबाव महसूस कर रहा है। 2025 ने सिखाया कि सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है, अब समझदारी से योजना बनाना जरूरी हो गया है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं मेलबर्न के फाइनेंशियल प्लानर दीपक बंसल से, जो बता रहे हैं कि 2026 के लिए आर्थिक रूप से तैयार होने का असली मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं 2026 की, तो जो 30 और 40 की उम्र में लोग होते हैं, वो सुपर एनुएशन को लेकर कौन कौन सी गलतियां अब भी कर रहे हैं इस साल भी?
अच्छा, इसका तो ये है कि वो अपनी एज पे फोकस दे रहे हैं, ना कि जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कर सकते हैं। एज को अगर हम एक तरफ साइड पे रखें, अगर हम सारे वैसे जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सुपर में, शुरुआत तो पहले तो यहाँ से करें कि देखें आपका एम्प्लॉयर सही सही कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये अज्यूम ना करें कि वो कर ही रहा है। दूसरा, कई लोगों के पास मल्टीपल सुपर एनुएशन अकाउंट्स होते हैं, उसको एक अकाउंट में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जितने अकाउंट होंगे उतनी आप फीस भर रहे हैं हर सुपर फंड को। उसका कोई वो वेस्ट ऑफ मनी है, उसको आप एक ही अकाउंट में ले आए अपनी सारी सुपर, वहां से आपकी बचत शुरू हो जाएगी। तीसरा स्टेप वो कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सैलरी सैक्रिफाइस। अब सैलरी सैक्रिफाइस क्या होता है कि इंप्लॉयर तो एक मिनिमम जैसे परसेंटेज आपकी डाल रहा है सुपर में, जो सैलरी सैक्रिफाइस है वो आप अपनी इनकम घर लाने से पहले अगर सुपर में डालेंगे, वहां पे वो जनरली 15% टैक्स पे जाती है, रेदर देन जो आपका बाहर जो टैक्स रेट है वो जो भी आपकी इनकम के बेसिस पे है 30% 40% आप उस पे टैक्स भर रहे हैं। अगर आप वही थोड़ा सा पैसा सुपर में डालेंगे उससे आपकी सुपर भी ग्रो होगी। कंपाउंडिंग जिसको हम कहते हैं ब्याज पे ब्याज मिलता है, वो अगर आज की डेट में अगर कोई 200 से लेके $500 भी अगर महीने का एक्स्ट्रा अपनी सुपर में डाल सकता है, वो आने वाले 15-20 सालों में 6-figure सम बन सकता है।
अच्छा, अगर बात करें दीपक जी इमरजेंसी फंड की, तो ये कितना होना चाहिए?
देखो, रूल ऑफ थंब जो हम कहते हैं 6 महीने का खर्चा, कि 6 महीने भगवान ना करे कुछ भी हो जाए, आपके पास जॉब नहीं है या हेल्थ नहीं है, आपकी कम से कम मिनिमम जो खर्चे हैं रोटी पानी मॉर्गेज इसके खर्चे निकल सके, उससे फायदे बहुत हैं। उससे यही सबसे बड़ा फायदा तो है आपकी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि जब इतनी अगर सेविंग होगी तो रात को नींद अच्छी आएगी, बंदा डर के नहीं सोएगा कि भी मेरे पास कल को क्या हो गया। 6 महीने का है, 6 महीने में सब संभाला जा सकता है जनरली। तो 6 महीने का हम रूल लेके चलते हैं। आप बजट, सबसे पहला रूल फाइनेंशियल प्लानिंग का या अपने आपको मेंटली सेफ रखने का कि पैसों के वे से है कि आप अपना बजट बनाएं। हर को मैं यही कहता हूं, बजट जरूर बनाएं, ना भागें उससे। पेन पेपर पे लिखें आपके कौन से खर्चे हैं महीने के, उसमें से उसको डिवाइड करें, कौन से खर्चे आप अवॉइड कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते, फिर वहां से आपको आपकी करंट पोजीशन पता लगेगी आप कहाँ खड़े हो।
कोई ऐसी ऐप आप रेकमेंड करेंगे, कोई आसान तरीका बजट करने का?
बहुत ज्यादा आसान तरीका है, वेबसाइट मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, पर वेबसाइट का नाम है मनी स्मार्ट। वो मनी स्मार्ट वेबसाइट पे इनका बजट प्लानर करके कैलकुलेटर है, एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर है, और वो इतना सिंपल टू यूज और इतना फ्रेंडली टू यूज है। उसमें मतलब हर कैटेगरी है खर्चे की, और कई ये भी है कि भी कौन सा खर्चा आपका वीकली है, फोर्टनाइटली है, या मंथली है, या ईयरली है, आप उसको उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वो अपने आप आपका वर्कआउट कर देगा कि आपका बजट महीने का कितना है या हफ्ते का कितना है।
अच्छा दीपक जी, अगर बात करें जो न्यू माइग्रेंट्स होते हैं, उनको किस पर ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर्टी, शेयर्स, या पहले एक कैश बफर बनाना चाहिए उनको?
कैश बफर, अगर आप मेरे को इन तीन कैश बफर के बिना ना आपके पास डिपॉजिट होगा प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट सोचने से पहले, तो कैश पैसे से पैसा बनता है जो हमारी पुरानी कहावत है, तो पहले तो अपने आप को इतना स्टेबल करना चाहिए कैश बफर के बेस पे कि भी 6 महीने का कम से कम खर्चा निकल जाएगा, कल को जॉब है या नहीं भी है। ठीक है, मानता हूँ हार्ड है, मैं भी माइग्रेंट हूँ, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट करा था, कहना आसान है करना मुश्किल है, पर एक बारी कर लोगे लाइफ आसान हो जाएगी।
अच्छा, अगला सवाल दीपक जी मॉर्गेज होल्डर्स के लिए है, उनको किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए 2026 में?
सबसे पहली चीज तो उनको ये करनी चाहिए, कभी ये ना सोचे कि रेट्स कम होंगे, जब भी प्लानिंग कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, पर अपनी प्लानिंग में ये चीज ना सोचें कि रेट्स कम होंगे और मेरी रिपेमेंट्स कम होंगी, वो सोच जो है उसी वो प्लानिंग शुरू से ही खराब कर देगी। इनफैक्ट मैं ये कहता हूं कि हमेशा ये प्लान करके चलें कि रेट बढ़ेंगे, आप उस अकॉर्डिंग उतना ही लोन लो, उतनी ही रिपेमेंट्स पालो, कि ये सोच के कि रेट्स या तो सेम रहेंगे या बढ़ेंगे। दूसरा होता है कि वही जो पहले कह रहा था बफर, स्ट्रेस बफर कहते हैं हम उसे, स्ट्रेस बफर बना के चले कि कम से कम 2 महीने की रिपेमेंट्स एक्स्ट्रा अपने बैंक अकाउंट में लेके चले, कि हैंड टू माउथ वाला काम ना हो कि भी ये कमाया और ये रिपेमेंट गई, अगर एक बारी नहीं कमा पाए तो रिपेमेंट कहाँ से आएगी, वो फिर स्ट्रेस लाएगी, फाइनेंशियल स्ट्रेस लाएगी, फिर वो मेंटल स्ट्रेस लाएगी, वो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इसको हम कहते हैं स्ट्रेस बफर को बना के चले। तीसरी चीज जो वो कर सकते हैं ऑफसेट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं ऑफसेट अकाउंट या कई लोग कहते हैं रीड्रॉ अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा समझें, इसको यूज करके बहुत फायदे होते हैं, कि मैं तो सिर्फ जनरल वे से समझा सकता हूँ किसी को अभी, क्योंकि हम रेडियो पे हैं, जिसमें क्या होता है कि जितना पैसा तुम अपने ऑफसेट अकाउंट में रखोगे ना उस पे बैंक तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेता। तो लोगों के पास जैसे होम लोन भी है और सेविंग्स अकाउंट भी है, अब तुम जो सेविंग्स वाला पैसा है वो सेविंग्स अकाउंट की बजाय ऑफसेट अकाउंट में रखोगे, तो तुम्हारा जब अगले महीने बैंक रिपेमेंट निकालेगा ना उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन कम होता जाएगा और जो कैपिटल भर रहे हो वो बढ़ता जाएगा।
दीपक जी, क्या हम महंगाई के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2025 में चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, काफी हाई रहा है, तो क्या परिवारों को अब भी वित्तीय दबाव के लिए तैयार रहना चाहिए?
हाँ जी, देखो है तो आंसर हार्ड, पर हाँ जी, इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि भी महंगाई बढ़ रही है, कारण ये है कि इनकम अब उस लेवल पे नहीं बढ़ रही जिस लेवल पे महंगाई बढ़ रही। पहले के दौर पे महंगाई भी बढ़ती थी और इनकम भी ठीक रेट पे बढ़ रही थी, अब इनकम की ग्रोथ कम हो गई है इन मेनी सेक्टर्स कंपेयर टू जो महंगाई बढ़ रही है, तो इसलिए हमें ये प्रेशर फील हो रहा है कि अब सब कुछ महंगा लगने लग गया। का आंसर वही है नंबर जो पहला मैंने दिया था, कि अपने खर्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करो, जो जरूरी खर्चे हैं वो तो जरूरी खर्चे हैं, वो तो उनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, पर जो नहीं जरूरी खर्चे, अगर आपका घर का हाथ तंग है तो आप ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गैर जरूरी खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल में ला।
अच्छा, आखिरी सवाल दीपक जी, तो 2026 के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से आप सबसे बड़ी सलाह क्या देंगे लोगों को?
अपनी पोजीशन को समझें सही वे से, अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप को सच्चे वे से समझें कि आपकी इनकम कितनी है और खर्चे कितने हैं, चादर देख के पैर पसारें, पर अपनी लाइफस्टाइल को नीचे लाने की बात नहीं कर रहा, जस्ट टू अपने आप से ट्रू और रियल रहें कि हाँ भी मेरी इतनी इनकम है और मैं इतने ही खर्चे कर पाल सकता हूँ, इससे ज्यादा पालोगे तो वो आगे जाके प्रॉब्लम ही बने।
जी, बहुत अच्छी सलाह दी आपने दीपक जी, SBS हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू इति जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है, अगर आप अपनी परिस्थिति से जुड़ी सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने सलाहकार से संपर्क करें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।